हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, लोग बोलते हैं कि भगवान को दिखाओ, तो यहां पे भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति, क्या योग्यता है भगवान को हर समय हर क्षण देखने की, और इस योग्यता को आप श्लोक क्रमांक 28 से देख सकते हैं। उसमें लिखा है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है, और उसके बाद बताया गया है किस प्रकार से हर जगह हर वस्तु में जीवात्मा भगवान को देख पाता है। तो यानी योग्यता क्या है भगवान को सब जगह अंतर बाहर देखने में देखने की, और वो योग्यता है प्रेम। हरि सर्वत्र, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए जग जाना, ऐसा करके भक्त ने बताया। बहुत सुंदर कोटेशन है कि हरि, भगवान हरि हर जगह हर समय समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम होता है वही उसको प्रकट रूप में देख पाता है। जैसे हर लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन एक तरीके से, एक साधन करने से ही लकड़ी उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। तात्पर्य तो यानी साधन आप समझ ही रहे होंगे, साधन है कृष्ण भावनामृत भक्ति, जिसके द्वारा शुद्ध होकर के जीवात्मा अपने हृदय में भगवान को देख पाता है, और जब अपने हृदय में देख पाएगा तो सभी के हृदय में देख पाएगा और सभी अवस्थाओं में देख पाएगा भगवान के मौजूदगी को। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो ये आपने समझा होगा, इसको समझाने का तरीका और है। ऐसे चैतन्य चरितामृत में देखते कहते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। कि एक भक्त, एक महान भक्त इस जगत में स्थावर और जंगम, स्थावर मतलब एकदम अपने जगह पर स्थित हैं, और जंगम मतलब जो चलने वाली हैं, चलायमान हैं, जीवात्माएं, तो उन सभी को देखता है, लेकिन उनका संबंध कृष्ण से देखता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई पिता है, वो अपने बेटे का छोटा सा चप्पल देखता है, तो देखता चप्पल है लेकिन उसको स्मृति अपने बच्चे की होती है। तो उसी प्रकार से तो आप यहां देख सकते हैं, उसका कारण है बच्चे के प्रति प्रेम। तो इसलिए जो देखने की दृष्टि है वो परिवर्तित हो जाती है प्रेम के कारण। तो यहां पे भी इसी प्रकार से इस जगत को देखता है व्यक्ति, भक्त देखते हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं, स्मरण करते हैं कि वो कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण के इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। थोड़ा समझिए कुछ लाइंस को। एक बात यह कि भक्ति भौतिक मोक्ष से परे क्यों है। शुद्ध भक्ति की अवस्था में भक्त को इस शरीर में रहते हुए भी इतना सुख प्राप्त होता है कि वो मोक्ष की कामना ही नहीं करता। इस समय हम मोक्ष की कामना करते हैं क्योंकि हम जगत में दुखों का अनुभव करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक इत्यादि। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भक्त इस जगत में रहते हुए भी, भगवान के श्रवण कीर्तन के माध्यम से इतना सुख प्राप्त करता है कि वो इस जगत के दुखों को भूल जाता है। इसमें एक बहुत अद्भुत बात मैं विचार कर रहा था कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इस जगत में दुखों का कारण है सुख की प्राप्ति करने का अभ्यास करना या प्रयास करना। तो ये तो बात अजीब सी लगेगी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि अगर हम दुखों की निवृत्ति करने का प्रयास ऐसे करें कि ताकि भौतिक सुख प्राप्त हो, तो उससे हमें और सुख और हमें दुख प्राप्त होगा, क्योंकि भौतिक भोग ही हमारे दुखों की योनि है, दुखों का कारण है, कई बार हमने चर्चा किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि भगवान के भक्त इस जगत में रहते हुए भी भगवान को सुख देने का प्रयास करते हैं। इस बात को पांचवें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी बताया गया था, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्व माम शांति मृच्छति। तो भगवान के भक्त भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पूरे प्रोसेस में अपने आप ही ये तीनों ताप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इस वस्तु को जान लेता है, भगवान को जान लेता है, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है, उसके लिए तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। अब हम जैसे भक्त जो कि ना तो पूरी तरह भौतिकतावादी हैं और ना पूरी तरह प्रेम कृष्ण प्रेम में स्थित हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जो एकदम कृष्ण प्रेम में आरूढ़ हैं, प्रेमासक्त हैं, उनके लिए जगत में कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आप समझ गए ना, मुक्ति की अभिलाषा इसलिए होती है क्योंकि हम जगत में दुखों का अनुभव करते हैं, लेकिन भक्त दुख का अनुभव करता ही नहीं है अपने लिए। तो द वीर गायन महामग्न चित्तई, भक्त का चित्त जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान की कथाओं को सुनकर के इतना आनंदित हो जाता है कि उसको जगत के दुख सुख कोई महत्व नहीं रखते उसके लिए। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है, उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। तो ये संबंध में इस ऐसी स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से अभय पद को प्राप्त हो जाता है। भजा हूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, भगवान कृष्ण का भजन करते करते जब एक दिन प्रेमावस्था को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, तो फिर उसके लिए कृष्ण ऐसे समक्ष हैं जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसके पिता समक्ष रहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता के संग रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो जान रहा है कि पिता ने उसका हाथ को पकड़ा हुआ है। ऐसा ऐसा अनुभव एक भक्त को होता है, जैसे प्रहलाद महाराज को हुआ था और युधिष्ठिर महाराज, सारे जितने महान भक्त हैं उनका ऐसा अनुभव होता है। वो कभी भी भयभीत नहीं होते क्योंकि उनका पूरा विश्वास है, उनका अनुभव है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। ठीक है, भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में समा कीजिएगा, कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय या आत्मविनाश है, यानी कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और भगवान की दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति में लीन होना चाहता है, केवल चाहता है, संभव तो नहीं है, वो अपने अस्तित्व का नाश करना चाहता है। जबकि हमने चर्चा किया था कृष्ण प्रेम के माध्यम से भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम में संबंध होता है, उससे भक्त को भी मतलब असीमित आनंद प्राप्त होता है और भगवान को भी प्राप्त होता है। तो ये बड़ा नुकसान उठा जाते हैं वो लोग जो लोग इस प्रकार के तादात्म्य यानी कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता, ये सबसे बड़ी विपदा है। और इसके लिए एक भक्त बोलते भी है, कैवल्यम नरकायते, इस प्रकार का कैवल, इस प्रकार का तादात्म्य एक भक्त के लिए नरक जैसा होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि गोविंद भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, इसमें संबंध पे आप विचार करेंगे तो, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, अंजन का मतलब होता है जैसे काजल होता है उस प्रकार से, तो जब आंखों में प्रेम का अंजन लगे, तो ये आंखों में अंजन लगना है क्या? यहाँ पे आंखों के में अंजन लगने का अर्थ है, समझना चाहिए हृदय, हृदय में जब भगवान का प्रेम होता है तो भगवान के माधुर्य का अनुभव हम कर पाते हैं। इससे पहले भी शायद हमने समझाया होगा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान कृष्ण असुरों के सामने भी प्रस्तुत थे और असुरों को भगवान को देख करके कोई सुख नहीं मिल रहा था, अपितु क्रोध आ रहा था। ऐसे ही कालिया कालिया भी भगवान को एकदम लपेटा हुआ था, लेकिन कालिया को कोई सुख नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष था, प्रेम नहीं था। लेकिन वहीं गोपियां भगवान के प्रति इतना प्रेम करती थीं और अन्य भक्त भी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि भगवान को छोड़ ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान में इतना आकर्षण है। तो भगवान में आकर्षण तो है, लेकिन सर्वोपरि आकर्षण है, लेकिन हमारा हृदय जब तक काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य से या जितनी हद तक से फंसा उसमें से गंदा रहता है, वो आकर्षण का अनुभव हम नहीं करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को भक्ति का साधन करके इन गंदगी को निकालना होता है और हृदय में जो प्रेम है वो जब प्रकट होने लगता है तब व्यक्ति इस प्रकार के आकर्षण का अनुभव करेगा, भगवान का दर्शन अनुभव करेगा। भक्ति विलोचनेना, तो इस भक्ति के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा व्यक्ति संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, सदैव ही अपने हृदय में भगवान को देख पाते हैं। और कैसे भगवान को देख पाते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, यानी कि वो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जिनके गुण भौतिक बुद्धि और मन के परे हैं। तो यानी कि भक्ति के द्वारा हम बुद्धि और मन के परे का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं, करेंगे कह सकते हैं, संत लोग करते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही अपनी दृष्टि से उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता क्योंकि भगवान में आकर्षण इस प्रकार का है। तो ये स्थिति प्राप्त होगी हमें योगाभ्यास के द्वारा। तो इस कारण से ऐसी स्थिति जिसमें हम सदा भगवान का दर्शन कर सकते हैं, करेंगे, ये कितनी रेयर है, ये कितना कह सकते हैं बहुत ही मतलब बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे अखरोट का पेड़ आने में बहुत समय लगता है क्योंकि अखरोट बड़ा मूल्यवान वस्तु है, तो उसके लिए व्यक्ति धैर्य धरता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अखरोट आने में समय भी लगे तो कोई बात नहीं, मैं धैर्य रखूंगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, ये आने में समय लग सकता है लेकिन ये इतनी मूल्यवान वस्तु है। जैसे आप देख रहे हैं सदा भगवान का दर्शन प्राप्त होगा आपको हृदय में और असीमित आनंद की प्राप्ति होगी, तो उसके लिए धैर्य धरना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही होगा हमारे लिए। हरे कृष्णा।